सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। लड़कियों का क्या कर्तव्य है, स्त्रियों का क्या कर्तव्य है, इस विषय में आज कुछ कहते हैं। लड़कियों को विद्याभ्यास कराना चाहिए, परंतु वो उतना ही कराना चाहिए जितना गीता रामायण आदि ग्रंथ पढ़ सके, पत्र व्यवहार कर सके। कारीगरी भी सीखनी चाहिए, भोजन बनाना, सिलाई सीना, ये घर के काम सीखने चाहिए। क्या पता कब क्या कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए तो अपने घर में रहकर काम कर सके। आजकल लड़कियां नौकरी करती हैं, बाहर जाती हैं, घर छोड़ती हैं, ये अपनी संस्कृति के खिलाफ है। लड़कियों को किस प्रकार अपना समय बिताना चाहिए ये बात कही जाती है। ईश्वर भक्ति में और धर्म में सबका बराबर अधिकार होता है। धर्म दो प्रकार का होता है, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। तो सामान्य धर्म में सबका अधिकार होता है, जैसे धैर्य रखना, ये बहुत दामी चीज है। स्त्रियों में प्राय धैर्य की कमी होती है, बहुत जल्दी धैर्य खो देती हैं, थोड़ी आपत्ति को बड़ी आपत्ति मान लेती हैं। वहां विवेक से काम करना चाहिए, आपत्ति में धीरज रखना चाहिए। एक क्षमा है, अपराध को क्षमा करना, अपराध कहना, ये मामूली बात नहीं है। अपराध तो हो ही जाए, दूसरे को हम उपालंब देते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तो ये बढ़िया बात नहीं है। गलती जब हमसे होती है तो हम अपने को तो माफ कर देते हैं और दूसरे को ओलमा देते हैं, उपालंब देते हैं। नहीं, अपने को उपालंब देना चाहिए, दूसरे को क्षमा करना चाहिए। क्षमा करना तो आता ही है, पर अपने को करते हैं। एक मन को वश में रखना चाहिए, जैसा मन हा में हा करे वैसा नहीं करना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। शरीर की भी पवित्रता हो, वाणी की भी पवित्रता हो, व्यवहार की भी पवित्रता हो, भोजन की भी पवित्रता हो, ऐसे पवित्रता रखनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि धन के कमाने में भी पवित्रता रहनी चाहिए। अन्याय से जो धन पैदा किया जाता है उसमें अपवित्रता आती है, और उस अपवित्रता से अपवित्र विचार बनते हैं। अपने इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, संसार की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से कोई लाभ नहीं होता। एक आक्रोश बढ़ता है और अहंकार पुष्ट होता है। क्रोध से शरीर की जीवनीय शक्ति नष्ट होती है, वाणी में अपवित्रता आती है, विचारों में बुराई पैदा होती है, क्रोध को महान शत्रु समझ करके निकाल देना चाहिए। कोई कहे कि हमको सच्ची बात पर क्रोध आ जाता है, माने जो गलती लायक काम करता है फिर वो नहीं सुधारता है तो क्रोध आता है, तो आपको क्रोध करने का क्या अधिकार? आपने भी तो क्रोध करके गलती कर ली, तब आप उसकी गलती के लिए कैसे बोल सकते हो? क्रोध नहीं करना, क्रोध कहीं पर भी लाभ देने वाला नहीं है। सत्य बोलना चाहिए। परिवार में भी छोटे मोटे बच्चे यदि कोई गलती करें तो माता पिता उनको प्यार से पूछे कि तुमने क्या किया। बच्चे कहते हैं कि हमसे गलती हो गई या ये काम हमने किया, तो फिर उनको दंड नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे में सत्य बोलने की ताकत आती है, और पहले से आप उसको डरा देंगे तो वो झूठ बोलेगा। इसलिए उनको सत्य के लिए उत्साहित करना चाहिए। छोटे छोटे बाल बच्चे होते हैं, इनमें लड़कियां होती हैं, वो छोटेपन से बहुत समझदार होती हैं। अपने घर में ईश्वर की मूर्ति रखो और उन छोटी छोटी बच्चियों से भगवान की पूजा करवाओ। मीराबाई जी थी, छोटेपन से ही भगवान को मानती थी। वो जानती नहीं थी कि शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है। वो एक कृष्ण की पूजा करते करते जब कहा कि तेरी शादी होगी, तब कहा कि नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। ये छोटेपन से मीराबाई के संस्कार आए थे। रसोई बनाने की कला सीखनी चाहिए, समय आने पर आजीविका चला सके, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं है। कातना सीना ये थोड़ा करना चाहिए, और जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ी विद्या जरूर पढ़नी चाहिए कि जिससे हम हमारे ग्रंथ को पढ़ सके, और उनकी बातें घर में बड़े बूढ़े दादा दादी है उनके बीच में हम पढ़ी हुई बात बोल सकें और समझा सकें। छोटे बच्चे के मुख से जो कथा है, रामायण है, भक्तों का चरित्र है, गीता बातें हैं, ऐसी उनके मुंह से बोली हुई बच्चों की बातें बहुत प्यारी लगती हैं। इसलिए बड़े बूढ़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अपने पोतों को, पोती को बुलाकर कहे, बेटा ये हमको सुनाओ। खुद जानते हो तो भी कहने, बेटा तुम सुनाओ। बच्चों के मुख से निकली हुई बात बहुत अच्छी लगती है। माता पिता और बड़ों का आज्ञा पालन सिखाना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा लाभ होता है। स्त्रियों को चाहिए कि स्वार्थ का त्याग करके बहुत उत्तम बर्ताव परिवार में करना चाहिए। माताओं को चाहिए कि वे अपनी बच्चियों को ये सिखाए कि ससुराल में जाकर कैसा बर्ताव करें। प्रायः देखा जाता है कि माँ अपने बेटी को ससुराल के जाते समय स्वार्थ की बात ज्यादा सिखाती है, और वो ही सीख के वहां जाती है और वो स्वार्थ का व्यवहार करती है, तो फिर ससुराल में खटपट मचती है। बच्ची को ऐसा कह करके भेजो कि भाई देखो, तुम्हारा इतने दिन तक तो ये घर था, अब इस घर से बढ़कर तुम्हारा वो घर है, और यहां जैसे तुम प्रेम से रही, ऐसे इससे ज्यादा तुमको प्रेम से रहना चाहिए। और उनको कहना चाहिए कि भाई तुम वहां अच्छी संगत में रहना, बुरी लड़कियों का, बुरी स्त्रियों का संग न करें। ये लड़कियों का धर्म संक्षेप में बताया, अब स्त्रियों के लिए बताते हैं। साधारण धर्म तो सबके लिए ही है, ईश्वर भक्ति विशेष करनी चाहिए। परिवार में स्त्री यदि अपने धर्म को समझ करके चलती है तो सारे परिवार में एक नया रंग बदल सकती है, परंतु ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई नहीं है, पति सब कुछ है। बाल बच्चे हो उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जैसे मदालसा थी, सुमित्रा जी थी, वास्तव में बालकों को अच्छी शिक्षा जितनी बढ़िया माँ दे सकती है उतना संसार में कोई नहीं दे सकता। इसीलिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, स्त्रियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मंदालसा अपने छोटे से बालक को गोद में लिए लिए बोला करती थी, शुद्धो सि बुद्धो सि निरंजनो सि संसार माया परिवर्जितो सि संसार स्वप्न त्यज मोह निद्राम मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। अरे बेटा तू तो बहुत शुद्ध है, तू तो बुद्ध है, तू तो ज्ञानी है, तू सारी माया से रहित है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, ये संसार तो सपने के समान त्याज्य है, ये संसार निद्रा के समान केवल स्वप्न में सुख देने वाला है, वास्तव में सुख देने वाला नहीं है, इसको त्यागो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, ऐसे ये मंदालसा बोलती थी। सुमित्रा ने भी अपने पुत्र को लक्ष्मण को कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भक्त जासु सुत होई, कि भाई सीताराम जी वन में जाते हैं, तुम यहां क्यों, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, जहां राम है वहां अयोध्या है। तो जिसका लड़का भगवान का भक्त होता है उसकी माँ कृतकृत्य हो जाती है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। जो नारी अपने बालकों को क्रोध पूर्वक व्यवहार करती है और बालकों को झिड़कती रहती है, छोटे छोटे बच्चों का मन तोड़ती रहती है, वह निंदा का पात्र होती है। छोटे बच्चे हैं, इनका मन खुश रखो। और विशेष बात ये कहनी है, स्त्रियों को अपने वचन मीठे और पवित्र करके बोलने चाहिए। प्रायः स्त्रियां थोड़ा कटु बोलती हैं और व्यंग में बोलती हैं, मोसा मार के बोलती हैं, कठोर और गंदे मैले शब्द से अगले व्यक्ति के चित्त में दुख होता है। हमारे गीता में लिखा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। आपके वचनों से किसी को उद्वेग नहीं होता है तो आपका एक तप होता है, ये तप है। कोई कितना ही आपको कठोर बोले, आप उसको वापिस शीतल वाणी से बोलेंगे तो उसका क्रोध दूर हो जाएगा। ये सबके लिए ही है, भगवान ने ये जिह्वा दी है, ध्यान से सुनो कितनी बढ़िया बात, जिह्वा दी है, ये जिह्वा हरदम गीली रहती है, इसको सदा पानी में ही रखे है, मुंह में पानी रहता है, इसको पानी में रखा है, अर्थात जैसे पानी शीतल होता है, जिह्वा से वाणी निकलती है तो जिह्वा यही चाहती है कि हमसे शीतल वचन निकलने चाहिए और मीठे वचन जो है वो निकलने चाहिए। तो वचन मीठे कब निकलते हैं, कि जब अपने मन में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। व्यवहार शुद्ध करना चाहिए, व्यवहार के शुद्ध होने पर चित्त में स्वाभाविक शांति होती है। छानने से जैसे जल पवित्र होता है, ऐसे ही स्वार्थ का त्याग करने से व्यवहार पवित्र होता है। स्त्रियां केवल अपने ही अपने बाल बच्चे, अपने ही पति, बस वहीं तक वो सोचती हैं, परिवार में औरों के विषय में भी सोचना चाहिए। मन को शुद्ध करके, स्वार्थ त्याग करके व्यवहार करना चाहिए। प्रिय बोले, हर एक माता बहन को देख लेना चाहिए कि जो मेरे द्वारा व्यवहार हो रहा है उसमें कहीं स्वार्थ की गंध तो नहीं है। ये अपने अंदर तोलना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर स्वार्थ है या नहीं है इस बात का ज्ञान सिवाय आपके और किसी को नहीं है। तो आप निर्णायक हो, आप पंच हो, और पंच परमेश्वर होता है, पंच को न्याय की बात कहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप अपने व्यवहार को तोलिए, लड़कों को अच्छी शिक्षा दीजिए जिससे लड़के वीर बने, भक्त बने। लड़कों को डराने जैसी बात कहते हैं, आओ बिल्ली खा जाएगी, चुप रहो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बिल्ली खा जाएगी? ऐसा डरा करके अभी तो बच्चे को चुप करती हो, परंतु ये बच्चा आगे डरपोक बन जाएगा। बच्चे को तो उल्टा ये कहना चाहिए कि देख बेटा, उस बिल्ली को भगाओ, उस कौवे को भगाओ। वो बच्चा दौड़े दौड़े जाएगा तो साहस आएगा, उल्टा बच्चे को डराती है। ऐसा करना अनुचित है। शकुंतला के लड़के का उदाहरण है। शकुंतला का लड़का था, शकुंतला के लड़के का उदाहरण देखना चाहिए। शकुंतला का लड़का था भरत, वो माँ की गोद में बैठा, माँ कहता देख बेटा ये सिंह आया, जाओ इससे लड़ो, कुश्ती लड़ो। तो बच्चा माँ की गोद से जाता, साहस से, वीर से, वीरता से जाता, और वो जाकर सिंह से पंजा लड़ाता, ताकत लगाता। तो सिंह के छोटे छोटे बच्चों को वो जीतने लग गया, तो आगे जाकर उसमें बहुत बड़ा बल आ गया, साहस हो गया। बड़ी अवस्था में सिंहों से वो लड़ता था, सिंह का मुंह पकड़ करके यूं दबा देता और सिंह के दांत गिनता, 1 2 3 4 ऐसे। ऐसे ही माता कुंती ने संदेश भेजा अपने लड़कों को कृष्ण के साथ कि जाओ युधिष्ठिर से कह दो कि क्षत्राणी जिस समय के लिए पुत्र पैदा करती है वो समय आ गया है। विदुला ने अपने पुत्रों को यही कहा कि तुम कायर होकर हमारे आगे निकल जाओ घर से। उसका बेटा था युद्ध में गया, वो प्राण बचा के भगियाया। विदुला कहा मेरे घर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ, मर जाओ और क्या होगा। तो वो वापिस गया, माँ के धमकाने के कारण से तो वो विजयी होकर आया। ऐसे बच्चों में साहस भरना चाहिए, विद्या उत्तम प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। विद्या कह दो, शिक्षण कह दो। विद्या का अर्थ है पुस्तकों का अध्ययन, उत्तम विचार, उत्तम विचार सिखाना चाहिए, झूठ नहीं सिखाना चाहिए। बच्चे को झूठ बोलाना बचपन में सिखा देते हैं तो फिर वो बच्चा आगे जाकर झूठ बोलने में संकोच नहीं करता है। एक बात और है, मारवाड़ी लोगों में छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको माताएं या परिवार के लोग लाड प्यार में भी या क्रोध में भी रांड कहकर पुकारती है। रांड का अर्थ होता है विधवा। आओ वो छोटी बच्ची है, उसको रांड कहकर पुकारना कितनी बड़ी, कितना बड़ा कुवाक्य है। यदि कहीं बड़ी हो जाने पर, शादी हो जाने पर कहीं कुछ ये बात दुर्घटना हो गई, वो विधवा हो गई, तो उसमें वो भी कारण बनेगा कि आपने इसको बचपन में रांड रांड कहा है। लड़कों के लिए भी बहुत गंदी बात बोलते हैं, राख उड़िया, मरजाना, ये बातें स्त्रियों को कभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि माताओं के द्वारा ये शब्द अपने बच्चों के लिए फिर कहीं कुछ हो जाने पर कारण बन जाते हैं। बच्चों को ऐसे नहीं धमका सकते हो, पर शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। माँ का सबसे ज्यादा बच्चे पर असर पड़ता है। बालकपन में झूठ सीखता है तो माँ से, चोरी सीखता है तो माँ से। लड़के में जो अच्छाई आती है वो माँ से आती है, और बुराई आती है वो भी माँ से ही आती है। माँ बाप को बहुत सावधानी से बच्चों के साथ बर्ताव करना चाहिए, बहुत संयम से रहना चाहिए, कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, पति से बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए, पति के सामने कटु वचन नहीं कहने चाहिए, पति के चित्त में दुख हो ऐसे शब्द से अपराध बनता है, अपने से बड़ों से बहुत उत्तम व्यवहार करना चाहिए। जैसे सुहागन के लिए पति परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे विधवाओं के लिए परमात्मा पति स्वरूप है। उल्टी बात, बात एक ही। श्रृंगार करने वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। जैसे प्लेग की बीमारी से, छूत की बीमारी से हम लोग बचते हैं, ऐसे जो श्रृंगार में शौक रखने वाली स्त्रियां हैं उनसे दूर रहना चाहिए। मानव शरीर मिला है, यदि यहां वैराग्य नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? देवता तो वैसे ही वैराग्य में नहीं रहते, भोगों में पड़े रहते हैं, पशु वगैरह वैराग्य जानते नहीं है। वैराग्य तो एक मानव शरीर में हो सकता है, उसमें भी आप श्रृंगार में उलझ जाओगी तो फिर वैराग्य आपको कहां मिलेगा? संसार के भोगों को मेले के समान समझना चाहिए, घृणा करनी चाहिए। जैसे मांस से घृणा करते हो, जैसे टट्टी पेशाब से घृणा करते हो, आप विचार करो कि शरीर के अंदर सिवाय मांस हड्डी मल मूत्र के अलावा और क्या है? ये वैराग्य करने के लिए भगवान ने ऐसा शरीर बनाया है। परमात्मा को परम पति मानो, उनकी भक्ति करो। शास्त्रों में बताया है विधवा होने पर चूड़ी नहीं रखनी चाहिए। आजकल तो चूड़ियां सोने की चांदी की पहनती हैं, यह भी श्रृंगार करने वाली स्त्रियों के लिए अखर है, ये पता नहीं क्या है। सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, कब्जा पहनने वालों का श्रृंगार न करें। समझ में नहीं भाई, आप समझ लेना। आप लोग बाल न रखे हैं, आजकल निंदा करते हैं तो यदि रखा जाए तो श्रृंगार न करो, राम की तरह रहो, पुरुष हो वो राम जी की तरह रहो, बनवासी राम जी की तरह, और स्त्रियां हैं वो शबरी की तरह रहो। श्रृंगार विष के समान है, खास बात है। चूड़ी पहननी है तो परमात्मा की चूड़ी पहनो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि, ये चूड़ी पहनो। अहिंसा है, सत्य वचन है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन है, भोग सामग्री आदि में शौकीनाई हटानी है, वैराग्य है, ये चूड़ियां पहनो। पवित्रता से रहो, अंदर भी पवित्रता रखो, बाहर भी पवित्रता रखो, संतोष रखो, जो मिल जाए उसमें खूब प्रसन्न रहो, और जो घटना घटे उसमें ईश्वर का विधान मानो। लाभ में हानि में, दुख में सुख में, बीमारी में मरने में जीने में, किसी प्रकार से अपने मन पर हलचल मत आने दो। एकादशी का व्रत करो। देखो, सुहागन स्त्री के लिए पति की आज्ञा हो तो करो, नहीं तो नहीं करो। इंद्रियों का मन का संयमन रखो, कोई भी काम करो लोभ में आकर, भय में आकर, क्रोध में आकर, काम के वशीभूत होकर मत करो, इससे धर्म का भी त्याग होगा। प्राण त्याग दो पर धर्म का त्याग मत करो। सीता जी का उदाहरण है, रावण उनको मारने की धमकी देता है पर सीता जी ने कहा कि या तो मेरे गले में राम जी की भुजा रहेगी या तेरी तलवार रहेगी। ऐसे मजबूत रहना चाहिए। इंद्रियों को संसार के भोगों से रोकना ये तप है, क्योंकि इंद्रियां भोगों के लिए नहीं मिली है, ये संसार के ज्ञान करने के मिली है और इनसे अलग होने के लिए मिली है। स्वाध्याय, भगवान के नाम का जप, शास्त्रों का अध्ययन, ये जितने शुभ कर्म हैं ये सब भगवान के अर्पण करके करते रहना चाहिए। अब मैं थोड़ा पुरुषों को समझाता हूं। पुरुषों को अपनी स्त्री के साथ मित्रता का बर्ताव करना चाहिए, स्त्री को कभी कटु वचन नहीं कहने चाहिए। विवाह के समय पुरुष प्रतिज्ञा करता है कि धर्म के काम में, विदेश के काम में तुमको साथ में रखूंगा। सीता जी का उदाहरण है, पति की सेवा के लिए, साथ में रहने के लिए स्त्री राम जी, सीता जी राम जी के साथ में गई। ऐसे में सीता जी ने हठ भी किया तो ये हठ न्याय है। तुलसीदास जी ने सीता जी से कितनी बढ़िया बात कहलवाई, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। ये संसार तो, इस संसार के भोग तो रोग के समान है। भूषण आभूषण है, गहने है, ये मेरे लिए भार है। और ये जितने संसार के लोग हैं, यम यातना, इन संसार में महलों में पड़ा रहना मेरे लिए यम यातना के समान है। ऐसे ही वचन कठोर सुनी जोन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषय विषम वियोग दुख सही ही पामर प्राण। आपने मुझे कहा कि तुम यहीं रहो, तो ऐसे कठोर वचन सुनकर के भी मेरे हृदय से प्राण नहीं निकलते, ये कोई मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अंत में भगवान सीता जी के इस हट के सामने पिघल गए और भगवान उनको साथ में ले लिए। पति को चाहिए कि विदेश में जावे और ज्यादा दिन रहने का काम पड़े तो पत्नी को साथ में लेकर के जावे। घर में आप कोई भी काम करो, अपनी पत्नी से सलाह लेकर के काम करो, क्योंकि वो सुख में और दुख में, जिसमें दुख में वो आपके साथ निभाने वाली है और दूसरा कोई दुख में साथ निभाने वाला नहीं है। स्त्री बीमार हो जाए तो अपने से बढ़कर उसकी दवा का प्रबंध करना चाहिए। हमें कभी कभी खेद होता है कि घर में लड़का बीमार पड़ता है तो बड़ी चिंता करते हैं, दवा देते हैं, वैद्य डॉक्टर को बुलाते हैं और खूब तड़फा तड़फी करते हैं, लेकिन लड़की बीमार होती है तो ये उपेक्षा सी करते हैं। लड़की का मर जाना कोई विशेष कष्टदायक नहीं मानते। एक लड़की का उदाहरण, यह अधिक दहेज का कुफल है। दहेज देना पड़ता है इसलिए शादी नहीं हुई, और मर गई तो कोई बात नहीं, और ये बड़ा भारी पाप लगता है इससे, ऐसा भेदभाव रख लिया। तो हर एक भाइयों को ख्याल रखना चाहिए। हमारे भगवान ने लड़का दिया तो बहुत अच्छी बात, खूब प्रेम करो। लड़की दी तो बहुत अच्छी बात है, लड़का भी है और लड़की भी है तो बहुत प्रेम से समान बर्ताव करो। हमारी विषमता हमारा ही पतन करने वाली है। पति और पत्नी में आपस में प्रेम और विश्वास होना चाहिए। स्त्री बीमार पड़ती है तो दवा की विशेष प्रबंध नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री बीमार पड़े तो पति को सोचना चाहिए कि यदि आज इसकी जगह मैं बीमार होता तो स्त्री कितनी चिंता करती। अतः आज मेरा भी ये कर्तव्य है कि हम इसकी खूब ज्यादा सेवा करें और दवा का प्रबंध करें। स्त्री से प्रेम का और उदारता का व्यवहार करना चाहिए। जैसे भी हो स्त्री के चित्त में कोई कष्ट न हो, क्योंकि वो पातिव्रत्य धर्म का पालन करके आपके घर की मर्यादा रखने वाली है, इसलिए उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त है संग वर्जित है, निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव है। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे परायण रहता है, जो मेरा भक्त है, किसी से बैर नहीं करता है और आसक्ति से रहित है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। भक्ति का विषय बड़ा गहन है और बड़ा सुगम भी है। परिवार में भक्ति रखनी चाहिए। जहाँ तक हो पति और पत्नी के बीच में ज्यादा बोलचाल भक्ति को लेकर होनी चाहिए। पुस्तक पढ़ने वाली स्त्री भी कह सकती, आज मैंने ये भक्त की कथा सुनी, और गीता आदि पढ़ने वाला पति कैसा, आज मैंने गीता में ये बात बढ़िया पढ़ी। ऐसे पति और पत्नी के बीच में ये गीता की, भक्तों की, इनकी भक्ति की ये बातें चलती रहती हो तो उस घर में बड़ी शांति, बड़ा प्रेम रहता है। भगवान के प्रेम प्रभाव की बातें करनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि श्रवणा भक्ति भी कल्याण करने वाली होती है। तो और कहीं सत्संग न मिले तो अपने घर में सब बैठ करके सत्संग कर सकते हैं। तो जो ऋषि मुनियों के बीच में चर्चा होती थी वो आपके घर में भी हो सकती है। कितनी बढ़िया बात कही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइकं तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु रामपद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग करने से हमारे अंदर के ज्ञान के भाव जागृत रहते हैं। 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, धुंधकारी महान पापी था उसका उद्धार हो गया, अपत अजामिल गजगनिकाऊ महान पतित अजामिल का उद्धार हो गया भगवान के नाम कीर्तन से। जब ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं तो ये उदाहरण हम लोगों के काम में आने चाहिए। भगवान के ऊपर भरोसा करो। भगवान कहते हैं आप लोग कल्याण के लिए कमर कस लो, और तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भरत जी महाराज जैसे आप भगवान के चरणों के सेवक बनो, लक्ष्मण जी भगवान के चरणों के, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की दासी रहती है। भरत जी महाराज वन में जाकर पादुका लेकर राज के अधिकारी होते हुए भी राज गद्दी पर भरत जी ने महाराज ने राम जी के चरणों को रखा, तो आज भरत जी की कितनी महिमा है। केवट चरणामृत से तरी नहीं गया, कितनों को तार दिया, कुल सहित तार गया। पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर अपारी करी प्रभु ही पुनीर मुदित गए ले पार। भगवान के चरणामृत से सारे कुटुंब को, पितरों को पार लगा दिया। केवल पूजा से भी उद्धार होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेच्छति। एक पत्ता द्रौपदी ने अपनी हंडिया में से दिया था, ऐसे ही हाथी ने एक फूल दिया था, एक शबरी ने केवल फल दिए थे, रंती देव ने केवल जल दिया था, उससे उद्धार हो गया। दुर्योधन के कितने बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान थे, लेकिन भगवान ने उसको ठुकरा दिया, और विदुर जी के घर मांग मांग करके वे खाने लगे। ये भगवान के प्रेम देखते रहने चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को नमस्कार करना चाहिए। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम है, दशाश्वमेधाव वृथेन तुल्य है, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय है। भाई एक भगवान के साथ दास भाव होता है, जैसे हनुमान जी दास बनकर के रहते हैं, इसलिए कलयुग में उत्तम भाव दास का होता है। सेवक सेव्य भाव बिनु, अर्जुन के समान भगवान के मित्र बनो, सुग्रीव के समान मित्र बनो, उद्धव जी के समान मित्र बनो, गोप ग्वालों के समान मित्र बनो। खुल करके बात करो भगवान से। मित्र होता है वो अपने माँ बाप से इतना खुल करके नहीं बोल सकता, अपने पत्नी पुत्र से नहीं बोल सकता, मित्र से ही मित्र खुल करके बोलता और किसी जगह नहीं बोलता। ऐसे आप भगवान से खुल करके बात करो, अथवा आत्मनिवेदनम, भगवान को आप अपने आप को अर्पण कर दो। इस प्रकार के ये 9 प्रकार के भक्ति के भाव हैं। ये 9 हो जाए तो कहना ही क्या है, एक से भी अपना तो बेड़ा पार हो सकता है। अंत में भाई अपने को भगवान में प्रेम करना चाहिए। दुनिया में चाहे हमारी निंदा हो उसकी परवाह मत करो, आपने तो एक भगवान की बात रखनी है, भगवान का ही संग करना है, भगवान का ही प्रभाव सुनना है, श्रवण मनन आदि सब भगवान के विषय में ही करना है। अपने को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया हमारा कोई निहाल करने वाली नहीं है, हमारा अंतिम काम तो भगवान से होने वाला है। इसलिए बड़े मस्ती के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कभी कभी बैठे बैठे कोई भगवान का कीर्तन याद आ जाए तो प्रभात प्रसन्न होना चाहिए, ओहो आज भगवान ने हमारे मन में कीर्तन उछाल दिया। जैसे कोई पानी के अंदर भगवान खड़े हुए हमारी तरफ पानी धकेलते हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसे भगवान ने हमारे अंदर ये कीर्तन का झोंका लगा दिया, बड़ी कृपा है, हे प्रभु आप आ गए, कीर्तन के माध्यम से आ गए, बस 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 अब आप आ गए, अब प्राण जाए तो भले ही जाओ, आपके सामने हमारे प्राण जाए तो भले ही जाओ, बाली की तरह मस्त हो जाओ, मुख में भगवान का नाम रहे और आंखों में आपका ध्यान रहे, बस ऐसे समय में प्राण जाए, इससे बढ़कर और हमारी कोई लालसा नहीं है। ये बात बताई साहब।